बताई है, तो 31:12-17 की अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा। 31:12-17 की जो अव्यक्त मुरली है उसमें बाबा आंख खुलने से लेकर के रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है, और हमारी सारी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण रहेगी तो हमारा योग सहज हो जाएगा। ठीक है ना? प्रश्न में क्या बोला बाबा ने, आज का प्रश्न क्या था? जिनकी अच्छी ब्रेन है वो क्या समझ सकते हैं? हाँ, ये शिव बाबा की मत है या ब्रह्मा बाबा की मत है वो सहज समझ लेते। अच्छा, बाबा ने कहा कि शिव बाबा की श्रीमत समझ करके चलते रहो, ब्रह्मा बाबा की मत का भी जिम्मेवार। हाँ, ठीक है ना, कितनी अच्छी बात। कई बार हमारे अंदर संकल्प चलता है, पता नहीं ये शिव बाबा की श्रीमत है या ब्रह्मा बाबा की श्रीमत है, तो बाबा ने आज बता दिया कि ब्रह्मा बाबा भी है ना। देखो, शिव बाबा जिसके तन में प्रवेश है, जिम्मेवार है ना शिव बाबा, तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब और नीचे आओ तो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, सेंटरों पर, सेंटर पर आपकी टीचर बहनें होती हैं, तो टीचर बहनें जो कुछ बोलती हैं है ना, बाबा ने उनको निमित्त बना के रखा है। अगर हम कहें नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर टकराव होगा, फिर सेवा नहीं बढ़ेगी। वो जैसे भी कहती हैं टीचर बहनें है ना, आप हाँ जी करेंगे तो सेवा में और वृद्धि होगी, सेवा और आगे बढ़ेगी। बाबा ने उनको निमित्त, भले अच्छा चलो कुछ गलती भी हो जाती है, तो बाबा ने कहा ना मैं जिम्मेवार हूं ना, मैंने उनको निमित्त बनाया, तो बाबा कहता मेरी जिम्मेवारी है, आप सोचो नहीं, आप कोई चिंता नहीं, अगर कुछ उल्टा भी होगा तो मैं, कई बार बाबा कहते ना, मैं उसको ठीक कर दूंगा। अच्छा, और बाबा ने कहा फिर सेंसिबल बन करके सेवा में लग जाना है। आगे, जवाबदार बाबा है इसलिए श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। और आगे, विचार सागर मंथन करके क्या करना है, बाप की श्रीमत पर अटेंशन देना है, स्वयं धारण करके फिर दूसरों को कराना है। बाबा की सारी मुरली कितनी शिक्षाओं भरी, तो श्रीमत पर देखें कि क्या सचमुच हमारी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण रहती है। श्रीमत में हम कभी मनमत तो नहीं मिक्स करते, कहां कहां मनमत मिक्स करते हैं, जैसे हम अमृत वेला उठने की श्रीमत है ना, उठते हैं सभी, उठते हैं, कईयों का मिस भी हो जाता होगा, आज ठंडी है, आज सो जाते हैं। अच्छा, मनमत कैसे मिक्स करते हैं, देखो बाबा की श्रीमत है उठो, हम मनमत कैसे मिक्स करते हैं, मनमत मिक्स करते हैं। बाबा ने कहा है ना, सहज राजयोगी हो, हम कोई हठ योगी थोड़ी हैं। अगर एक रोज तो उठते हैं, एक दिन नहीं उठेंगे तो क्या हर्जा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, मनमत हो गया। माया जो है बड़े रायल संकल्पों के साथ आती है, वो ये नहीं कि हाँ भाई सोए रहो, ये नहीं, हाँ, माया समझती ना कि ज्ञानी है, समझदार है, समझ जाएंगे। तो शरीर का बहाना, शरीर की भी बाबा ने कहा है ना, शरीर की भी तो संभाल करनी है, शरीर की भी तो नॉलेज रखनी है, शरीर ठीक रहेगा तो हम सेवा भी कर सकेंगे, योग भी कर सकेंगे, है ना, सब कुछ कर सकेंगे, इसलिए सो जाओ। माना उनके विचार से कि अमृत वेला हम सो जाएंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, तो यही हुआ ना। तो क्या करना है उस समय, नहीं, बाबा की श्रीमत है कि अमृत वेले उठो। एक बार अच्छा, हम सभी का लक्ष्य ना, क्या लक्ष्य है हम सभी का, उसके पहले क्या लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण के पहले क्या बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, बनना है ना सभी को। तो सुनो, ब्रह्मा बाबा ने कभी अमृत वेला मिस किया क्या, मिस किया नहीं किया। हम कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, और हमारा अमृत वेला मिस होता रहे तो बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। एक बार डॉक्टर ने बाबा के लिए बोला कि दादियों को बोला कि अपने बाबा को कहो थोड़ा तबीयत के अनुसार अभी दो चार दिन सुबह सुबह ना उठे। तो दादियां आई बाबा के पास, बाबा डॉक्टर ने खास बोला है आप दो चार दिन रेस्ट करो और हम लोग योग कर लेंगे, लेकिन आपको रेस्ट करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला होगा? दादियों ने बोला बाबा को कि बाबा आपको डॉक्टर ने बोला है दो चार दिन रेस्ट करो। अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, वो ऊपर वाला जो सुप्रीम डॉक्टर है वो बोलता है सुबह सुबह उठो, जो रूहानी डॉक्टर है वो बोलता है सुबह सुबह उठो, ये जिस्मानी डॉक्टर बोलता है सोए रहो, तो मैं किस डॉक्टर की बात मानूं? किस डॉक्टर की बात माने बाबा? रूहानी डॉक्टर की, और जिस्मानी डॉक्टर की नहीं मानूं? अच्छा, तो देखो दादियां तो बात करने में होशियार थी ना। दादी ने कहा नहीं बाबा, आप तो रूहानी डॉक्टर की ही बात माने, लेकिन दो दिन के लिए जिस्मानी डॉक्टर की भी, दो ही दिन की तो बात है ना, तो दो दिन के लिए इनकी भी बात मान लो। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ठीक है मैं सोचूंगा। लेकिन दूसरे दिन देखा कि बाबा रजाई वगैरह ओढ़ करके फिर आ गए, है ना। तो कहने का भाव ये है, हम बहुत ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल बातों में आए, है ना। हमें बाबा समान बनना है तो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या हम पहली पहली बात उल्लंघन कर दिया तो हम और क्या करेंगे? हम पुरुषार्थ की बहुत ऊंची ऊंची प्लान बनाए और अमृत वेला ही नहीं उठते हों, चलेगा क्या? तो पहली बात, पहली श्रीमत, दिनचर्या की पहली श्रीमत अमृत वेले उठना। तो इसके बारे में अब ज्यादा नहीं जाता हूं, आप मैं एक डेट बताता हूं वह पढ़ लीजिएगा, 16/11/95 की अव्यक्त मुरली है, जिसमें अगर कि कोई चाहते हैं कि मैं अमृत वेला उठूं और नहीं उठ पाते हूं तो ये मुरली पढ़ लीजिएगा। कई कहते हैं रात में लेट से सोते हैं या अमृत वेला उठते हैं भारीपन होता है या उठ नहीं पाते हैं, है ना, नींद नहीं खुलती, जो भी समस्याएं हैं, या रात में नींद नहीं आती है या सुबह उठते हैं तो भारीपन होता है, सारी समस्याओं का समाधान बाबा ने एक शब्दों में सुनाया है। और वो एक शब्दों में बाबा ने क्या बताया कि जब रात में सोने जाते हो, माना बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तो बाबा ने कहा कि बिस्तर पर बैठ करके कभी भी आपस में संसार समाचार की लेन देन नहीं करना। हम बैठते हैं तो आपस में चर्चा कर लेते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते बाबा वही तो समय होता है, हाँ सारा दिन तो हम बाहर बाहर रहते हैं, रात के समय इकट्ठा होते हैं, उस समय बातें नहीं करें तो कब करेंगे? तो बाबा, और फिर कई कहते हैं कि बाबा और हम कुछ नहीं, हम सेवा के बारे में बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बहुत जरूरी है सेवा के बारे में भी बातें करनी, तो कमरे से बाहर जाके, लेकिन कमरे में बिस्तर पर बैठ करके नहीं। अब जब बाबा ने यहां तक कह दी कि सेवा के बारे में भी बातें करनी तो कमरे से बाहर जाके बातें कर लो, और अगर हम रात में सोने के पहले इधर उधर का समाचार सुनते सुनाते, मोबाइल चलाते चलाते, है ना, समाचार सुनते सुनते आदि सोएंगे, बात करते करते सोएंगे, तो अमृत वेला हम उठ पाएंगे? अगर उठ भी जाएंगे तो भारीपन लगेगा, क्योंकि अवज्ञा की ना सोने के समय। इसलिए बाबा कहते सोने जाओ तो कैसे सो? रात में सोने जाते हैं तो सारे दिन का समाचार बाबा को सुना करके, अपने आप को पूरी तरह से हल्का करके, हाँ, बाबा को याद करके याद की गोदी में सो जाएं। और ऐसे नहीं सोचे कि आज सारा दिन, मैं सारा दिन बहुत बिजी रहा, बहुत मेहनत किया, आज सारा दिन रेस्ट नहीं किया कल अमृत वेला नहीं उठ पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। अगर ये सोच लिया तो नहीं उठ पाएंगे, पहले ही आपने प्लान दे दिया। अगर नहीं उठ पाएंगे तो कैसे उठ पाएंगे? आप ये सोचो कोई बात नहीं, मैं अमृत वेला कल उठूंगा, फ्रेश योग करूंगा, पावरफुल योग करूंगा, इस संकल्प के साथ। तो बाबा बहुत सारी विधियां हम उसमें ज्यादा विस्तार में न जा करके आप ये 16-11-95 की अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा, जिसमें बाबा ने अमृत वेले के बारे में बताया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आती है मुरली, है ना? तो मुरली सुनने का मतलब समझ लिया। बाबा कहते हैं कि मुरली सेंटर पर जाकर सुनो। वैसे तो भाई लॉकडाउन में तो जब मना किया गया था तो उसकी बात अलग है, जब मना किया गया था, है ना, भले उस समय, लेकिन जब बुलाया जाता। अच्छा, कई बार अभी ये भी कईयों को सुस्ती आ गई, हाँ मुरली तो आती है व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे आदि, हम कहीं भी मुरली ये तो सुनना है ना, कोई जरूरी है संगठन में जाना? संगठन में जाना जरूरी है क्या? है कहीं हम मुरली मिस नहीं करना है, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी पढ़ सकते हैं, चलेगा? अच्छा, आप बिल्कुल साइलेंस में हो गए, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि चलेगा? कहीं भी मुरली पढ़ ले सुन ले, हाँ, हमें मुरली संगठन में ही सुनना है। संगठन का जो वातावरण मिलता है, जो वाइब्रेशंस होता है, वो घर पे थोड़ी होगा। सेंटर का जो वातावरण होता है वो घर पे मिलेगा क्या? वहां का वाइब्रेशंस घर पे मिलेगा क्या? और बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है ये, और आप मुरली सुनते हो सेंटर पर जाकर के, तो पता है आप बहुत बड़ी सेवा करते हो, बहुत बड़ी सेवा करते हो। कैसे? मैं आपको एक प्रैक्टिकल घटना सुना दूं कि एक हमारी विदेश की बहन थी जिनका नाम संतोष बहन, विदेश की बहन है वो, रसिया देश की है, इनका नाम है संतोष बहन। तो उन्होंने कहा कि रसिया के अंदर, रसिया की गवर्नमेंट ने कुछ CID भेजे हमारे सेंटर पे कि जाओ देखो, ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़, इनके सेंटर खुलते जा रहे हैं, ये क्या सुनाते हैं आखिर, जाओ पता करके आओ। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर कौन आए? CID लोग आए। क्या करने आए? देखने आए, जांच करने आए, यहां क्या सुनाया जाता है। लेकिन CID आए वो गुप्त रूप में आए, है ना, गुप्त रूप में ही आएंगे ना भाई जांच करने, तभी तो कि देखेंगे। लेकिन हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर का क्या नियम होता है, किसको क्लास में अलाउ किया जाता है? जो कोर्स करता है राज्यों का। तो उन्होंने भी कोर्स किया। कोर्स करने का उद्देश्य क्या था? माना उनको ज्ञान सुनने का उद्देश्य नहीं था, उनका तो उद्देश्य था कि अंदर में हम जाएं, बैठें, सुने क्या सुनाया जाता है। तो कोर्स किया और अंदर आए, तो जब क्लास में आने लगे तो नेचुरली अच्छी चीज अच्छी ही लगेगी। तो अपने गवर्नमेंट को जाकर बताया कि भाई ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बहुत ऊंची बात बताती है, चरित्र निर्माण की बात बताती है, है ना, अच्छी ज्ञान की बात सुनाते हैं। तो उनके गवर्नमेंट ने पूछा, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उन्होंने कहा इसका हेडक्वार्टर तो इंडिया में है, माउंट आबू में। तो कहा माउंट आबू जाओ, इंडिया जाओ और वहां देख करके आओ वहां क्या सुनाते हैं। तो वो CID लोग यहां भी आए, गुप्त रूप में ही रहे, है ना, यहाँ पर विदेशियों का पीस ऑफ माइंड चलता है। तो वो प्रोग्राम अटेंड किए, ज्ञान सरोवर देखा, पांडव भवन देखा, शांति वन देखा, सब कुछ देखने के बाद फिर वो जाकर के अपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं। बताओ क्या बताया होगा उन्होंने, क्यों ब्रह्मा कुमारी संस्था सारे विश्व में आज फैल गई है, क्या बताया होगा? आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है, ठीक है मैं ही बता देता हूं। हाँ, क्या बता रहा? स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा देखो ये बड़े, आप आप सब से जुड़ी हुई वो बात है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर सुबह सुबह एक संगठन होता है जिसको वो लोग बोलते मुरली क्लास। ये मुरली का ही चमत्कार है कि सारे विश्व में इनकी शाखाएं फैल गई है। तो बताओ, आप लोग रोज मुरली संगठन में सुनते हो ना, और उसकी सेवा कहां तक जाती है? विश्व के कोने कोने तक। आप अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने सेंटर की सेवा नहीं कर रहे हैं, आस पड़ोस की सेवा नहीं, लेकिन सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं जब आप संगठन में मुरली सुनते हो तो। ठीक है, तो नियम बना लेना है कि रोज हमें मुरली, हाँ, संगठन में। अच्छा, अब कई बार हम कहते हैं कि मुरली सुनने जाते हैं लेकिन मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती है? ऐसा भी होता है क्या? आप चाहते हो कि मुरली की पॉइंट हमें भूले नहीं, याद रहे सारा दिन, चाहते हो? अच्छा, दो चार लोग चाहते हैं, बाकी लोग? सब चाहते हैं। अच्छा, कई बार ना कोई मुरली के पॉइंट हमें याद भी रहती है, अचानक कोई पूछता है आज बाबा ने क्या कहा, क्या होता है उस समय? फिर उसको बोलते, अरे रे, अंदर में है। उसको बोलते ना, अंदर में है, थोड़ा सा एक पॉइंट हिंट दे दो, है ना? और जैसे वो एक शुरुआत की पॉइंट बताता है और सारा पॉइंट फिर इमर्ज हो जाता है ना? तो अभी आपको किसी से हिंट मांगने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक विधि बताता हूं, आपको सारा दिन मुरली की पॉइंट याद रहेगी। बताऊं? अच्छा, करोगे? हाँ। तो क्या होता है, मुरली हम सुनते तो हैं, और ऐसे मीठे बच्चे, धारणा सार, वरदान, स्लोगन इधर सुनाया गया, उधर हम नोट कर लिया, लेकिन हम खुद मेहनत नहीं करते। एक बार मैंने दादी से सुना कि दादियां कैसे मुरली की पॉइंट लिखती थी, तो दादी ने कहा कि हम लोग चार डायरी बनाते थे। एक एक डायरी होती थी ज्ञान की, मुरली में जितनी बातें आती थी ज्ञान की, वो ज्ञान वाले डायरी में, दूसरा योग की, तीसरा धारणा की, चौथा सेवा की, इस प्रकार चार डायरियां, और चारों सब्जेक्ट की चारों बातें अलग अलग डायरी में लिख देते थे। तो इसी बात पर मेरा चिंतन चला, और फिर उस समय से हमने क्या किया कि रोज की मुरली से सात सूत्र, स्व उन्नति के लिए सात सूत्र, सात सूत्री कार्यक्रम चालू किया। तो रोज की मुरली से सात बातें निकालना क्या है, हम मुरली जब हम एकाग्रचित होकर के सुनेंगे तभी वो हम सात बातें निकाल सकेंगे। तो सात बातें हम कौन से निकालते हैं, आप लिखना इस प्रकार से। पहली बात, आज की मुरली से ईश्वरीय महावाक्य, जो आपको बात लग जाए, कोई मना ऐसा बात होता ना, हमारी खुशी को, हमारे उमंग को, हमारे उत्साह को बढ़ा दे, वो उस पॉइंट ईश्वरीय महावाक्य में लिख दो। फिर दूसरा सूत्र है, आज की मुरली से स्वमान। मैं आपको बताऊं कि आप लिखोगे स्वमान की पॉइंट निकालोगे तो कम से कम 100 बातें निकलेगी, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, हमें केवल पॉइंट नहीं निकालना है। ठीक है ना, पॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारी बातें, और वो फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हमारा ये लक्ष्य रहे कि जो हम लिखेंगे वो हम सारा दिन करेंगे। हा? क्या करेंगे, जो लिखेंगे वो हम करेंगे। तो एक बात, मैं ज्यादा लिखने की बात नहीं बोलता हूं, केवल एक बात, बातें तो बहुत निकलेगी लेकिन लिखना एक बात। तो आज की मुरली से स्वमान, चाहे आप वरदान से, चाहे स्लोगन से, चाहे मीठे बच्चे से, चाहे मुरली के बीच से, जो आप देखो आपको लगे, आपको अंदर से लग रहा है, तो वो स्वमान नोट कर लो। फिर तीसरा, आज की मुरली से योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। मैं तो करता हूं, जब भी रोज मैं योग में बैठता हूं तो मैं उस समय सोचता हूं आज बाबा ने योग के बारे में क्या बोला, और उस तरीके से मैं योग करता हूं। तो रोज नया नया विधि, योग की नई नई, बाबा ने कहा इतनी सारी विधियां बताया, वो किसके लिए, बाहर वालों के लिए क्या, हम बच्चों के लिए बताया है ना। तो रोज नई नई विधियों से हम मुरली रिविजन। अच्छा, फिर तीसरी बात क्या बताया, योग अभ्यास, योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। चौथा बात, आज की मुरली से धारणा। मैंने पहले भी बताया बातें बहुत सारी निकलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, एक बात और वही बात गांठ बांध लेनी। आज बाबा ने कहा है, ये हमें करना ही है। तो चौथी बात धारणा, पांचवी बात, पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये खास करके ये मैं टीचर्स बहनों को मैं जरूर ये बात बोलता हूं कि ये आप अगर कोई ज्ञान सुनाना चाहता है तो ये काम उसको करना चाहिए। अगर ये करेगा ना तो उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा फ्लो आ जाएगा सुनाने का, और योग भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। वो है आज की मुरली से चिंतन, एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना। कितनी बातें हुई, पांच। छठी बात, आज की मुरली में सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। सातवीं, आज की मुरली से स्व चेकिंग चार्ट, जो छह बातें हैं उसको चार्ट के तरीके से चेक करना। तो इस प्रकार से सात बातें ऐसे तो नहीं निकलेगी, जब आप बहुत ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनोगे तभी ये सात बातें निकलेगी। फिर देखना आपको मुरली का कितना रस मिलता है, आपको भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आप एकाग्रचित होकर के मुरली सुना है, मेहनत किया है, तब ये पॉइंट निकला है। तो ऐसे आप एकाग्रचित होकर ये सात बातें निकालेंगे, और न केवल निकालना है लेकिन लक्ष्य रखना है कि हमें ये जो सातों बातें निकाला है इसको सारे दिन में, दिनचर्या में, व्यवहार में, कर्म में लाना है। ठीक है, तो दूसरी श्रीमत मुरली। अच्छा, और आगे आता है खान पान की श्रीमत। खान पान की श्रीमत के लिए बाबा ने क्या बताया है, हमारा खान पान कैसा हो, सात्विक शुद्ध और हाँ योगी आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के हाथ का बना हुआ भोजन, बाबा की याद में भोजन खाएं। अच्छा, अब हम श्रीमत में मन्मत मिक्स क्या करते हैं। हाँ, कई बार हम कहते हैं ना, बाबा ने कहा है ना, सबके साथ तोड़ निभाओ, है ना, सबके साथ मिलकर चलो, ये हमारे रिलेटिव वाले हैं, ये हमारे से बड़े हैं, है ना, हमारे से सीनियर हैं, इनके हाथ से हम भोजन नहीं खाएंगे तो ये हमारे यहाँ आएंगे, हमारी ज्ञान सुनेंगे। और फिर कई बार हम ये सोच लेते हैं, बाबा ने तो कहा है दृष्टि से तुम सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या भोजन नहीं परिवर्तन कर सकते हो, क्या भोजन को शुद्ध नहीं बना सकते हो, क्या क्या संकल्प लाते हैं और हम भोजन कर लेते हैं मन मत मिक्स करके। लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है कि पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के योग युक्त होकर के भोजन खाओ। बाहर के है ना। अच्छा, कई बार ये थोड़ा सा जो नए नए हैं उनको शायद हजम नहीं हो सकता है, एक पॉइंट है कि कई बार हम कहते हैं अच्छा हमारे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, हाँ, और घर में तो बनाया हुआ खाना ही पड़ता, खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ज्ञान में कोई नहीं चलता है तो हम ही अकेले चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं खाओगे ज्ञान में, आपके घर में कोई नहीं चलता है और आप ही चलते हो, खुद बनाओगे। अच्छा, आपकी माताजी बोल रही, आपकी माताजी ज्ञान में नहीं चलती है, वो कहती बेटा हमारे हाथ का तो खा ही सकते हो, नहीं नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूं, अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, बाबा की अच्छा अरे बताओ, बाबा की याद में स्वीकार कर लेंगे, हाँ ठीक है ना, माताजी के बाबा कहता सबको सुख दो, हाँ बाबा तो कहता ना सबको सुख दो, और हमारी माताजी, हमारी माताजी, अब क्या अपनी माताजी कभी हाथ का नहीं खाएंगे, माताजी पक्की है अच्छा आप देखो उन्होंने उत्तर दे दिया है बहुत सुंदर। तो बाबा कहते हैं सुख दो लेकिन श्रीमत मर्यादा तोड़ करके नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं कहो
कि नहीं मैं तो ज्ञानी हूं तुम लोग अज्ञानी हो हम तुम्हारे हाथ के, ऐसे नहीं। हमको बड़े प्यार से जवाब दो, आपकी आज्ञा सिर माथे, आप जो कहोगे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये श्रीमत है ना, भगवान की आज्ञा है, श्रीमत है ना, और आप ज्ञान में चलो हम आपके हाथ का, ऐसे कह करके मना, बड़े प्यार से आप अगर उनको बोलोगे समझाओगे ना तो आपकी बात को, माता थोड़ा सा गंभीर हो गई अच्छा लग रहा है नहीं तो ऐसी भी नहीं बात है कि बाबा कहता है श्रीमत मर्यादा पर चलो, लेकिन देखो जो आपको कह रहा है वो कौन है, वो भी तो आपका माता पिता है कि नहीं। ये शरीर वाले माता पिता तो हमें 84 जन्म में 84 मिले, तो अपनी माता पिता का खूब आज्ञा पालन करना है उनकी है ना, और बहुत मीठा स्वभाव रखना है, उनकी हर आज्ञा का पालन करना है, उनके आगे अब नतमस्तक, लेकिन श्रीमत मर्यादा में ढीले। अगर हम श्रीमत मर्यादा में ढीले रहेंगे तो क्या वो देखेंगे तो उनके अंदर संकल्प चलेगा, ये पता नहीं इस अपने नियम धारणाओं में तो पक्का है नहीं, ज्ञान में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। और अगर हम नियम धारणाओं में पक्के होते हैं तो उनके अंदर भी हाँ कि ये अपने नियम धारणा का बिल्कुल पक्का है, इसको भाई फोर्स नहीं करो। कई बार कईयों को अनुभव होगा वो अपने मित्र नाते मित्र दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो कई लोग कहते हैं हाँ ये ज्ञान में तो चलता है लेकिन कहीं भी खा लेता है, अपने नियम धारणा का पक्का नहीं है, कच्चा ब्रह्मा कुमार है। और कोई है कि वो कहीं नहीं खाते तो उनको कहते भाई इनको फोर्स नहीं करो, ये बिल्कुल अपने नियम के पक्के हैं, कहीं खाते नहीं है। तो जब हम श्रीमत मर्यादा पर रहेंगे तो दूसरे भी हमें बहुत ऊंच नजर से देखेंगे, बड़े सम्मान की नजर से देखेंगे, हमें फोर्स नहीं करेंगे, और बाबा की भी मदद मिलेगी ऐसे समय पर, बाबा भी उनको मदद करता है। तो बाबा की याद में श्रीमत मर्यादा के अंदर रह करके, और बाबा कहता ऐसे नहीं कि भोजन आया एक मिनट बाबा को याद किया और बाकी आप फ्री हो गए। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाओ, अगर एक भी गिट्टी बाबा की याद में नहीं खाई तो वो गिट्टी किसके मुख में गई, माया के मुख में गई, और माया के मुख में गई तो माया क्या बन जाएगी, बलवान, हाँ माया खाएगी तो बलवान बनेगी ना। और बाबा ने कहा माया बलवान बनकर के फिर आपको ही तंग करेगी हमारा ज्यादा प्यार किससे है, बाबा से या माया से, बाबा से, ठीक है ना। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। तो बात चल रही थी कि हमारा प्यार सबसे ज्यादा किससे, बाबा से, माया से तो कोई नहीं बोलेगा ना, ठीक है। तो बाबा ने कहा जितने गिट्टी तुम बाबा की याद में स्वीकार करते हो, बाबा की याद में खाते हैं, तो वो गिट्टी समझो आपने बाबा को स्वीकार कराया। और अगर बाबा की याद में हमने गिट्टी नहीं खाई तो वो माया खा गई। अब आप बताओ कि ज्यादा गिट्टी हम माया को खिलाते हैं या बाबा को खिलाते हैं, माया को खिलाते हैं, प्यार बाबा से ज्यादा और गिट्टी माया को खिलाते हैं क्या बात है भाई जो गिट्टी हम बाबा की याद में खाए वो मनो बाबा को स्वीकार कराया, बाबा की याद में नहीं खाए तो माया खाई, ठीक है ना। उन्होंने ठीक ही उत्तर दिया। अब हमारा ज्यादा प्यार, कहते हैं हमारा ज्यादा प्यार बाबा से और गिट्टी किसको खिलाना, माया, तो ये ठीक है बाबा से प्यार रखना और गिट्टी माया को खिलाना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हाँ हर गिट्टी बाबा की याद में स्वीकार करेंगे, ठीक है ना, तब समझो बाबा को आपने खिलाया। तो इस प्रकार से हमें हर कर्म की श्रीमत देखना है और उस श्रीमत प्रमाण ही अपनी दिनचर्या बनानी है। खुद आप देखो कि
कि क्या सचमुच हमारी दिन जब हमारी कई बार हम कहते ना कि बाबा कहते मुझे यूज करो मैं तुम्हें मदद दूंगा बोलते हैं ना, फिर हम कई बार कहते हैं कि बाबा तो कहते हैं लेकिन मैंने कितना बाबा को याद किया, हमारे आगे समस्या आई परिस्थिति आई हमने बाबा को खूब पुकारा बाबा मदद करो समस्या आई है लेकिन बाबा की मदद तो मिली नहीं। कई बच्चे बाबा को बाबा ने बताया कि कई बच्चे उलाहना देते कि बाबा हम हमारे पास समस्या आई और हमने खूब आपको याद किया लेकिन आपकी मदद तो मिली नहीं। तो हो सकता है ऐसा बाबा के क्या महावाक्य की बच्चे बुलाए और बाप ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बच्चे तो कहते हैं कि बाबा हमने तो बुलाया आप तो आए ही नहीं। होता है ऐसा, उसके तीन कारण है, उसके तीन कारण है बाबा ने बताया है। बाबा बाप तो दाता है रहम दिल वो भगवान, वो भक्तों को मदद करता है तो क्या बच्चों को मदद नहीं करेगा क्या हा? लेकिन अगर हमें मदद नहीं मिलती तो उसके तीन कारण है। पहला कारण विधि से सिद्धि मिलती है ना, अगर हम विधि यूज नहीं करेंगे तो पहला कारण बाबा ने बताया तुम स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां कैसे आएगी, शक्ति नहीं आएगी तो हार खा जाएंगे। जब मालिक का कहना ही, जब हम मालिकपन की सीट पर रहेंगे तभी तो नौकर मानेगा काम, वो नौकरी छोड़ के चला गया है हम मालिक है ही नहीं है हा? आप आम व्यक्ति बन गए हैं साधारण और लोगों की तरह तो कैसे मानेगा वो। तो बाबा ने कहा जो बच्चे स्वमान की सीट पर मना राजा बनकर के आत्मा राजा बनकर के मालिक बनकर के शक्तियों का आह्वान करेंगे तो शक्ति अवश्य आएगी। तो शक्ति नहीं आती है उसका पहला कारण है हम स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते। दूसरी बात बाबा ने कहा जो बच्चे श्रीमत के आगे जितना जी हजूर करते हैं बाबा की शक्तियां भी उसके आगे उतना जी हजूर करती है। हम रोज मुरली सुनते हैं मुरली में कितना हाँ जी करते हैं, हम कहते हैं हाँ बाबा की खूब मदद मिले और हम बाबा की एक भी बात न सुनते हूं। कई माताएं बोलती कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, माताएं ऐसे कि जिनका बेटा जिनकी बात नहीं सुनता हो, सब माताओं की सारे हैं बात सुनता है। खैर ठीक है आप लोग तो ज्ञानी समझदार माताएं हो ना। अब कहते हम कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, अब हम देखें हम भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हैं कि नहीं, हम उस बाप की कितना बात मानते हैं, वो भी तो हमारा मात पिता है, उस मात पिता की हम कितना मानते हैं, जितना उस मात पिता की हम बात मानेंगे उतना हमारे बच्चे भी हमारी बात मानेंगे। याद रखना अगर हमारी बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो जरूर उस मात पिता की बात हम भी नहीं मान रहे हैं। आप उसकी बात मानना चालू करोगे ना तो सारी दुनिया आपकी बात मानना चालू कर देगी। तो दूसरी बात शक्तियां उसके आगे जी हजूर करती है जो बाबा के श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं। तीसरी बात जो अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं, नोट कर लेना, जो अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं शक्तियां उनसे बदला लेती है कि तुमने मुझे व्यर्थ गंवाया तो जब तुम्हें शक्ति की बहुत जरूरत होगी उस समय हम शक्ति को आने नहीं देंगे। और जो अपने समय को सफल करते हैं सारी शक्तियां उनके आगे जी हजूर करती है। तो यदि हम चाहते हैं कि बाबा की मदद सदैव मिलती रहे, बाबा की शक्तियां सदैव हमारे आगे हाजिर रहे, उसके लिए पहली बात स्वमान की सीट पर सेट रहें, दूसरी बात श्रीमत में जी हजूर करें, तीसरी बात समय को पूरी तरह से हम सफल करें। आज का वरदान क्या था? अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव, ठीक है ना। श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा कौन है? हाँ, जो बाप को प्रत्यक्ष तो बाबा को प्रत्यक्ष करना माना पहले हम अपने आप को, हम इतना रूहानियत में रहे, हम हमारे अंदर से इतना दिव्यता दिखाई पड़े, अलौकिकता दिखाई पड़े, हम दूसरों को ये नहीं सुनाए कि हाँ देखो बाबा कहते हैं कि बच्चे आजकल ज्ञान सुनने सुनाने का समय नहीं रह गया, आजकल आपके जीवन को देखना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा है। ज्ञान लोग सुन सुन करके थक गए हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं? प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं। तो हम देखें कि वो प्रैक्टिकल जीवन से हमारा दिखाई पड़ता है। हम अपनी बात बता दें, मैं अपने घर की बात बता दूं कि हमारे घर में सारा परिवार ज्ञान में चलने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं चले। पिताजी वो कहते, वो कथा भागवत कराने जाते थे, वो कहते मैं इतना बड़ा विद्वान, कथा भागवत कराने वाला महाम है ना आचार्य, मुझे भगवान नहीं मिला, ये कहते मुझे भगवान मिल गया है वो बात नहीं मानते थे। लेकिन हम लोगों को देख करके, हमारी दिनचर्या देख करके, हमारे जीवन को देख करके एक दिन वो भी ज्ञान में आ गए। तो क्या हुआ? हाँ, प्रैक्टिकल जीवन ये सेवा करता है। जो बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं आचार्य, वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते, वो जीवन देखना चाहते हैं। तो दूसरे ब्राह्मण जब हमारे घर पे आते थे तो हमारे पिताजी उनको कहते थे भाई ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कर्म देखना है तो मेरे बच्चों के अंदर देखिए। घर में आते थे तो हम लोगों के ऊपर गुस्सा करते थे, तुम्हें भगवान ऐसे भगवान मिल जाएगा क्या, और बाहर जाकर दूसरे से महिमा करते थे कि भाई ब्राह्मणों की जीवन देखना है, ब्राह्मणों का जीवन देखना है तो मेरे, हम लोगों को देख करके इतने फिर प्रभावित हुए कि वो भी ज्ञान में आए। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ये चाहते हैं तकदीरवान आत्मा, जो सारा देखो दुनिया के अंदर, अब इसके ऊपर चिंतन करना, दुनिया के अंदर तकदीरवान किसको कहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तकदीरवान किसको कहेंगे? दुनिया के अंदर तकदीरवान कहेंगे भाई जिसके धन संपत्ति ज्यादा हो, पद पोजिशन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पद तो बाबा कहता है ब्राह्मणों की जीवन में तो ये तो जीरो के समान है ना। ब्राह्मण जीवन में कौन है तकदीरवान? हाँ, जिसके पास ज्ञान धन है, सारे अविनाशी खजाने हैं, जो संपूर्ण योगी आत्मा है, जो संपूर्ण पवित्र आत्मा है ना, जो संपूर्ण आत्मभिमानी स्थिति में रहता है, जो अपने समय स्वास्थ्य संकल्प को सफल करता है। अच्छा, स्लोगन सन्नाटा छा गया ये तो क्या बात है इतनी गहन शांति, अपनी रहम की दृष्टि से पुण्य आत्मा है। हाँ, देखो तो हम पुण्य आत्मा है तो सबके प्रति रहम की दृष्टि, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, सिखाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना। तो जब देखो एक अच्छे के साथ अच्छा होकर के चलना, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन जो आपकी की घृणा करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं है ना, आपके कार्यों में विघ्न डालते हैं, उनके प्रति भी शुभ भावना रखना, उनको भी आगे बढ़ाना, ये है हमारे जीवन की महानता, ठीक है ना। तो ये थी आज की मुरली, और मुरली के ऊपर कुछ चिंतन। अभी आपके पास 15 मिनट समय है, सबसे पहले हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद आप सभी यहां से उठेंगे, बाहर जाकर के फ्रेश होकर के चाय रखी है, चाय पी करके फिर इस हॉल में आकर के बैठेंगे, फिर 11 बजे से आप सभी का क्लास होगा। ओम शांति। 2 मिनट हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।